यदा जब न नहीं उपलभेत अनुभव किया अंग्रह पामों में ऊष्माणं गर्मी पतिहो अपने पति के अर्चति सेवा करते समय आसीत हुई संविघ्न चिंतित हृदया हृदय में यूथ भ्रष्टा अपने पति से बिछुड़ी मृगी हिरणी यथा जिस प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। जब वह अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि उसके पांव अब गर्म नहीं हैं। अतः वह समझ गई कि उसने पहले ही इस शरीर को त्याग दिया है। अकेली छूट जाने पर उसे अत्यधिक पीड़ा चिंता हुई। अपने पति के साथ से विरहित वह अपने को उस मृगी के समान अनुभव करने लगी जो अपने पति से बिछुड़ गई हो। तात्पर्य, ज्यों ही शरीर में रक्त तथा वायु का संचार रुक जाता है तो यह समझा जाता है कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। रक्त का संचार जब बंद हो जाता है तो हाथ तथा पांव ठंडे पड़ने लगते हैं। यह जानने के लिए कि शरीर जीवित है या नहीं, लोग हृदय की धड़कनों तथा हाथों और पांवों का ठंडा पड़ना देखते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानं शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजन सहतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्वसे नमः। नमः वांछाकल्पतरभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाद पाश्चादिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है ये विषय चल रहा है अगले जन्म में पुण्यजन को स्त्री होने की प्राप्ति। तो पुण्यजन अभी स्त्री बने हुए हैं और बेदरवी के नाम से स्त्री हैं और अपने पति की सेवा कर रही हैं बेदरवी। तो यहाँ आप पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि महाराज मरुध्वज की पत्नी वैदर्भी जो हुई तो मरुध्वज अपने पुत्रों को सर्वस्व सौंप करके और अपनी पत्नी के साथ वन में वानप्रस्थ लेकर के चले गए थे। वहाँ उन्होंने ऐसा लिखा है 100 वर्षों तक दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की और उनकी पत्नी उनकी सेवा में लगी रही बेदरवी। सेवा करते करते उसने अपना शरीर भी क्रसकस कर दिया था, अपने शरीर की कोई परवाह नहीं थी, वो इतनी सेवा करती थी अपने पति की। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब वह अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि उसके पांव अब गर्म नहीं हैं। अपने पति की सेवा क्या कर रही थी, चरण दबा रही थी, क्योंकि उसके पति समाधिस्थ रहते थे और पहले के ऋषि मुनि जब समाधि लगाते थे तो ऐसी समाधि लगाते थे कि यही नहीं पता लगता कि ये जिंदे हैं या मरे हुए हैं, एकदम अपने शरीर का होश आभास भूल जाते थे वो। ऐसे आप लोगों ने प्रथम स्कंद में सुना होगा कि जब महाराज परीक्षित आंखें टिकले निकले थे तो उन्हें बड़ी भारी प्यास लग रही, समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उसमें समीक मुनि आंख बंद करके ध्यानस्थ थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे अपने हृदय में, और ऐसा ध्यान कर रहे थे उन्हें वाह्य ज्ञान बिल्कुल था ही नहीं, शरीर का होश आभास भी नहीं था। महाराज परीक्षित को प्यास लगी हुई थी, बोले स्वामी जी हमें प्यास लग रही है कुछ पानी पिलाओ, पर बाबा ने सुना ही नहीं। 2-3 बार बोला नहीं सुना, सुनते कहाँ से, वो समाधिस्थ थे उन्हें अपना वाह्य ज्ञान था ही नहीं। तो महाराज परीक्षित के मन में ऐसा कुछ विचार आया कि लगता है इसने हमको देख करके झूठ मूठ आंखें बंद कर ली हैं, एक बड़ा महान सम्राट आ रहा है तो इसकी सेवा करनी पड़ेगी, तो सेवा से बचने के लिए इसने झूठ मूठ आंखें बंद करके बहाना करके बैठ गया है, सर्प डाल के आ गए थे मरा हुआ सर। तो यहां कहते हैं कि जब वह अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसने अनुभव किया कि उसके पति के चरण अब गर्म नहीं लग रहे, क्योंकि शरीर में जब प्राण होते हैं तो गर्मी होती है। श्री रूपाई तात्पर्य कहते हैं कि ज्यों ही शरीर में रक्त तथा वायु का संचार रुक जाता है तो समझ जाता है कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। जब तक शरीर में आत्मा रहता है तब तक शरीर गर्म रहता है और शरीर संचारित रहता है। श्री रूपा जी कहते हैं कि जब आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो रक्त संचार जब बंद हो गया तो हाथ पर उसके ठंडे पड़ गए, तो समझ गई कि हमारे पति ने लगता है शरीर छोड़ दिया, तो अत्यंत चिंता में हुई। और आप वैसे पीछे भी सुना है, दो श्लोक पहले ही शायद कल परम पूज्य प्रबोधन महाराज भी बता रहे थे कि स्त्री और पति गुरु शिष्य की उपमा दिए हैं। जिस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु की सेवा निष्कपट भाव से करता है, उसी प्रकार स्त्री का भी परम धर्म है कि अपने पति की सेवा निष्कपट भाव से करती और करे। ये भगवान ने भी कहा है, भगवान ने गोपियों से कहा है कि जब भगवान ने मुरली की ध्वनि से आकर्षित करके गोपियों को बुला लिया था रास के लिए, तो उसमें भगवान ने पहले तो उनका स्वागत किया और कहा कि देवियों देखो तुम यहाँ पर क्यों आई। ब्रूत आगमन कारणम ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूत आगमन कारणम, आप अचानक ब्रज से रात्रि में क्यों आई। ब्रूत कारणम, कोई ऐसा विशेष घटना हुई क्या जो आप रात्रि में यहां पर आई। कहो ब्रज में सब कुशल से तो हैं, कोई घटना तो नहीं घट गई जो मेरे पास आई हूं। और देखो यदि ब्रज में घटना भी घट गई होगी तो भी ब्रज के सभी लोग आते मेरे पास, तुम अकेली कैसे आई हो। तो अपने आने का कारण बताओ। गोपियां बोली, एक दूसरे की तरफ देख रही, देखो ये हमेशा टेढ़ा ही बोलते हैं, है ना, इनका बोलना ही हमेशा टेढ़ा ही रहता है। खड़े होते हैं तो टेढ़े, चलते भी टेढ़े ही हैं और बोलते भी टेढ़े ही हैं, नाम भी टेढ़ा है उनका और उनको समझना भी टेढ़ी खीर है, टेढ़े को समझना और टेढ़ी खीर है। पहले तो हमको बुलाया और आप कहते हैं ब्रूत आगमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है, कहो कैसी आई। और बड़ा सुंदर लेक्चर सुनाने लगे, उपदेश सुनाने लगे, जानती हो ये रजनी ये सुघोरा, ये रजनी जो है अंधेरी, ये रात्रि है और रात्रि में जो कुलशील स्त्रियां होती हैं उन्हें कभी अकेले विचरण नहीं करना चाहिए, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए रात्रि में। तुम अच्छे परिवार से हो, सुशील स्त्रियां हो, तो तुम्हारे आना यहाँ अच्छा नहीं है और तुम अपने अपने घर लौट जाओ। जानती हूँ स्त्री का धर्म क्या है, तो स्त्री के धर्म के बारे में बता रहे हैं। भर्तो सुशूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हिमाया तदबंधुनाम च कल्याणी प्रजानाम च अनुपोषणम। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी यधनोऽपि वा पतेः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सुभिर्पात की। भगवान बोले देखो देवियों जानती हो भर्तुः सुशूषणं स्त्रीणां परो धर्मो हि अमायया। जानती हो स्त्री का धर्म क्या है? बोली क्या है? बोले स्त्रियों का धर्म ही नहीं, बोले परो धर्मो, उनका सबसे परम धर्म है भर्तुः सुशूषणं, अपने पति की सेवा करें। अपने पति की सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म है। तद बंधु नाम से कल्याणी, अपने पति की तो सेवा करें ही, और जो तद बंधु नाम जो उनके पति के बंधु हैं यानी परिवार वाले हैं, उनकी भी निष्कपट भाव से उनकी भी सेवा करें, निष्कपट भाव से। और प्रजानाम चान पोषणम, अपने बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन करें, उनका पालन पोषण करें, नहलाएं धुलाएं, स्कूल भेजें, उनकी देखरेख करें। प्रजानाम चान पोषणम, बच्चों का पोषण करें, ये स्त्री का परम धर्म है। और देखो स्त्री का पति उसके भाग्य से कैसा ही मिला हो कि हर व्यक्ति को, स्त्री को पति अपने भाग्य से मिलता है और पुरुष को पत्नी अपने भाग्य से मिलती है। अच्छी हो या बुरी हो वो भाग्य के अनुसार ही दोनों की प्राप्ति होती है। और अपने भाग्य के भाग्य से जैसी भी, जैसा भी पति मिले स्त्री के लिए, चाहे कैसा ही हो, दुशील हो, दुर्भग हो, वृद्ध हो, जड़ो, रोगी या धनोपवा, दुशील हो, चाहे बुरे स्वभाव वाला हो, हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव वाला ही क्यों न हो, दुशील हो, दुर्भग हो, चाहे अभागा ही क्यों न हो, दुशील हो, दुर्भग हो, जड़ो, रोगी या धनोपवा, चाहे बिल्कुल मूर्ख हो और चाहे बिल्कुल ही निर्धन ही क्यों न हो, पृथ्वी स्त्री ब्याहतव्यो लोके सुभिर पातकी, यदि उसका पति पातकी नहीं है तो, यदि वैश्यगामी है तो उसकी सेवा करने से कोई लाभ नहीं। यदि उसका पति पातकी नहीं है, वैष्णव है, तो ऐसे वैष्णव पति की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है, परो धर्म, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। क्योंकि भक्त पति हो और भक्त पति की सेवा करने का लाभ, डबल लाभ मिलता है उसे। एक तो स्वयं जो अपना जप करती है, अपनी साधना करती है, वो तो लाभ है ही है, और पति की सेवा करने पर आधा जो उसकी भक्ति का फल है वो पत्नी को मिल जाता है, मात्र सेवा करने से। तीसरे स्कंद में वर्णन आता है जब कर्दम मुनि का विवाह देवहूति के साथ हुआ था। क्यों? कर्दम मुनि चाहते थे मेरा विवाह हो, बड़ी भारी तपस्या करी विवाह के लिए ही उन्होंने। ऐसा लिखा है भागवत में कि जब ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि जाओ तपस्या करो, तपस्या करके फिर विवाह करो और फिर संतति उत्पन्न करो, तो कर्दम मुनि सरस्वती नदी के किनारे पर आकर के 10,000 वर्षों तक तपस्या की उन्होंने। 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा मुनिवर मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो कुछ। तो बोले प्रभु मैंने तपस्या मांगने के लिए की, ये मेरी निष्काम तपस्या नहीं है। ऐसे यद्यपि आप इस संसार बंधन से भी छुड़ाने वाले हैं, वरदाताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, आपसे बढ़कर के कोई वरदान देने वाला है ही नहीं, और जो लोग आपकी भक्ति करके आपको प्रसन्न करके संसार की वस्तु मांगते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, सबसे बड़े अज्ञानी हैं। पर क्या करूं प्रभो, तथा सचाहम परपोडु कामम समानशीलम गृह मेघधेनु उपेमान मूलम अशेष मूलम। कहते प्रभो क्या करूं, मैंने जो तपस्या की है क्योंकि मेरा मन जो है काम से कलुषित हो रहा है। तथा से काम परपोट कामम, तो क्या चाहते हो? बोले समान शीलम गृह मेघधेनुम। प्रभु मैंने जो तपस्या की है ये चाहता हूं कि मेरे समान यानी तपस्विनी पत्नी हो। यानी पत्नी कैसी हो? वाही सुंदरता नहीं हो, बोले समान शीलम, उसका शील कैसा हो? मेरे समान तपस्या करने वाली भक्त हो, समान शीलम गुण धेय और शी गुणवान हो, जो घर गृहस्थी को ठीक से काम धेनु के समान उसको संभालने वाली हो। यद्यपि आप मोक्ष को ही प्रदान करने वाले हैं, पर क्या करूं मेरा हृदय काम से कलुषित हो रहा है, तो मैं एक पत्नी ऐसी चाहता हूं जो मेरे समान गुण वाली हो और तपस्विनी हो, भक्त हो। क्योंकि जब पति और पत्नी दोनों ही भक्त होते हैं तो उनका तो कहना ही क्या है, दोनों मिलकर कन्हैया से खूब लाड़ लड़ाते हैं, खूब सेवा करते हैं, क्योंकि गृहस्थ का कर्तव्य है घर में भगवान को रखें, चाहे जगन्नाथ भगवान हो, चाहे राधा श्याम हो सुंदर हो, चाहे गौरताई हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, जिनमें प्रीति है, जो भी भगवान की ड्यूटी घर में रखें। और गृहस्थों का बड़ा मुख्य धर्म है कि गुरु के निर्देशन में और भगवान की सेवा करें, अर्चा विग्रह की सेवा करें, और दोनों ही प्रेम से सेवा करें तो कहना ही क्या है। तो वो गृहस्थी फिर गृहस्थी नहीं रह जाती, वो क्या बन, फिर आश्रम बन जाता है। ये क्या होता है? गृहस्थ एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। और जो ऐसा नहीं करते हैं, पति पत्नी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका स्वार्थ होता है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए एक दूसरे से अपना संबंध स्थापित करते हैं, तो गृहस्थ आश्रम नहीं, वो क्या है, गृह मेघी कहे जाते हैं उनको, गृह मेघी। गृहे सुवस्ताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्ता यातयामानाम न बंधाय गृह मतः। उस समय की बात है जो प्रचेता खूब तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि भाई तुम शादी कर लो, मरसा नाम की कन्या उसके साथ शादी कर लो। बोले प्रभु हमको घर गृहस्थी में क्यों फंसा रहे हो? जो घर गृहस्थी में एक बार फंस गया वो फंस गया हमेशा के लिए, बहुत मुश्किल निकलना, प्रयास करने पर भी नहीं निकल पाते, कितना ही प्रयास करें कितना ही प्रयास करें, मन इतना निकम्मा है कि मन में कोई ना कोई, अरे वो काम कैसे बनेगा, हमारे परिवार वालों का क्या होगा, या फिर अब हम हमारी सेवा कौन करेगा, और वृद्धावस्था में हम घर को छोड़ दें, भाई सेवा कौन करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कितना ही प्रयास करें घर को नहीं छोड़ पाते। तो प्रचिता बोले प्रभु घर तो बंधन का कारण है गृहस्थी, तो इसमें को क्यों फंसा रहे हो? तो भगवान का प्रचेता ऐसी बात नहीं है, जानती हो गृह सुवस्ताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम। जो व्यक्ति कुशल है बुद्धिमान है तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वो बंधन को प्राप्त नहीं होता। कैसे? बोले मद वार्तायात यामानाम न बंधाय गृह मता। ऐसे गृहस्थ आश्रम में रह करके गृहस्थ आश्रम में भी जो दोनों पद पत्नी मद वार्तायात यामानाम आठवयाम मेरी कथा वार्ता में श्रवण कीर्तन में मेरे चिंतन में भजन में इत्यादि में आठवयाम मेरे चिंतन में भजन साधन में रहते हैं तो न बंधाय गृह मतः। भगवान कहते हैं उनके लिए गृहस्थी बंधन का कारण नहीं बनती। कब नहीं बनती है? जब आठवयाम हम कृष्ण भावना भावित रहें तो गृहस्थी बंधन का कारण नहीं बन पाती। तो यह कर्दम मुनि ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूँ समान शीलम गुण धेय, एकदम हमारे समान वाली है ना, हमारे गुणों के हमारे समान गुणों उसके हों, और ऐसी हमको पत्नी चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, वो तो हमने दे दिया तुमको, व्यवस्था कर दिया, से ठीक तीसरे दिन मनु महाराज आएंगे और बिल्कुल तुम्हारी जैसी तपस्विनी है देवभूति, और वो छोटे मोटे घर से नहीं है, वो राजकुमारी है, मनु महाराज की पुत्री है और प्रियव्रत की उत्तान पात प्रियव्रत की क्या है वहन है, आप उससे विवाह कर देना, तो ये कथा ज्यादा बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जब मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ कर दिया, तो कर्दम मुनि पत्नी को स्वीकार कर लेते हैं। शर्त थी उनकी एक कि इसके एक पुत्र हो जाएगा या एक संतान हो जाएगी, फिर मैं फिर वन में चला जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, हमेशा गृहस्थी में नहीं रहूंगा। तो मनु महाराज अपनी पुत्री को देकर के चले जाते हैं और देवहूति अपने पति की सेवा ऐसी करती है, ऐसी सेवा करती है, ऐसी सेवा करती है जैसे भवानी भगवान शिव की सेवा करती है। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है, जो भवानी है पार्वती जी भगवान शिव की कितनी सेवा करती है। जब वो जंगल में रहते फक्कड़ बाबा, भगवान शिव अपने लिए कोई मकान भी नहीं रखते, कोई बढ़िया वस्त्र भी नहीं पहनते, लेकिन पार्वती उनकी ऐसी सेवा करती है, मन लगा करके ऐसी सेवा करती है कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी प्रकार देवहूति उनकी ऐसी सेवा करने लगी, क्योंकि विवाह तो उन्होंने कर लिया कर्दम मुनि ने, पर तपस्वी थे, समाधि में बैठ गए, और पहले के संतों की समाधि एक दो दिन की, एक आध महीना की भी नहीं लगती, महीनों महीनों की, सालों सालों के समाधिस्थ बैठ जाते थे। जैसे ये इसमें दिया है ना कि वैदर्भी के पति जब समाधिस्थ कई सालों से समाधिस्थ बैठे हुए भगवान के चिंतन कर रहे थे, वो बेचारी सेवा करती रहती थी, वो समझती थी कि ये तो ध्यानस्थ हैं, और ध्यानस्थ ध्यानस्थ में बाबा के प्राण निकल गए, जब ठंडी शरीर पड़ गया तब वो समझी कि ये तो चले गए। तो देवहूति ऐसी सेवा करती रहती थी, कर्दमुनि खूब ध्यानस्थ में बैठ जाते थे और समाधि लंबी लंबी समाधि उनकी लग जाती थी, और देवहूति उनकी सेवा करती रहती थी, इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी कि वो अपने शरीर की भी परवाह नहीं करती थी, ना शरीर को संभालना है, और कोई बेहतर भी नहीं क्या है, इतनी सेवा की अपने पति की, अपने शरीर की कोई चिंता नहीं, शरीर को संभालती नहीं वो। तो ऐसे ही देवहूति न शरीर को संभालती, न शरीर की कोई चिंता, सेवा करती रहती करती रहती। जब कर्दम मुनि की समाधि खुली तो उनकी नजर पड़ी देवहूति पर, देवहूति को देख करके एकदम उनका मन हृदय पिघल गया, धन्य है देवी, तुमने मेरी कितनी सेवा की है, तुम कितनी सुंदर राजकुमारी थी, और तुम्हारा शरीर कैसा, एकदम बिल्कुल शरीर पर महल की परत जम गई है, बाल चिकड़ गए हैं, कपड़े महले कुचैले हैं, कोई परवाह नहीं, जब कितनी सुंदर राजकुमारी थी, ऐसा वर्णन आता है भागवत में, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जो अपनी छत पर केस सुखा रही थी तो विवस्वान नाम का एक गंधर्व ऊपर होके जा रहा था अपने विमान पर, तो उसकी सुंदरता को देख करके अपने शरीर का होश आवाज भूल गया और अपने विमान से नीचे टपक पड़ा, वो नीचे गिर गया विमान से उसकी सुंदरता को देख करके, इतनी सुंदर। और वो राजकुमारी शरीर क्रस क्रस हो गया है, शरीर पर बहुत सारी महल की परतें पड़ गई हैं, बाल चिकड़ गए हैं, कर्दमुनि ने देखा तो प्रसन्न हो गए और बोले जय हो देवी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। बोले तुष्टो हम अद्य तव मानवी मान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देह नामतीव स्वृत सदेहो नावेक्षिता समुचिता छपितुं मदर्थे। कर्दमुनि बोले देवी तुष्टो हम अद्यमान भी मानदाया, हे मनंदिनी, हे मनुपुत्री, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुष्टो हम, मैं आज आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने मेरी ऐसी सेवा शुश्रूषा की है कि मेरी सेवा करने पर आपने अपने शरीर की परवाह नहीं की, धन्य है आपकी ये पति भक्ति, जो कितनी आपने भक्ति के साथ मेरी सेवा पूजा की, मेरी सेवा की है, जो आपने मेरी सेवा के पीछे अपने शरीर की परवाह नहीं की, आपका शरीर एकदम क्षीण हो गया, दुबली पतली हो गई। अरे हर प्राणी के लिए शरीर बड़ा प्रिय होता है, सभी के लिए शरीर बहुत प्रिय होता है, तब शरीर से संबंधित वस्तु प्रिय लगती हैं। पहले अपना शरीर प्रिय, फिर शरीर से संबंधित पति पत्नी धन इत्यादि, तब वो प्रिय लगता है, पहले शरीर प्रिय लगता है। तो हर व्यक्ति के लिए अपना शरीर प्रिय होता है। आपने मेरी सेवा के पीछे अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। और देखो मैंने खूब बड़ी भारी तपस्या करी है भगवान की, इतनी तपस्या की है, तपस्या करके भगवान के बहुत सारे आशीर्वाद मैंने प्राप्त कर लिए। तो भगवान के ऐसे आशीर्वाद प्राप्त मैंने किए हैं जो मानव जीवन का परम धर्म है, और बड़ा ही परम दुर्लभ है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना। और वो कृपा जो भगवान कृपा मुझे मिली है, वो कृपा मैंने आपको आपको प्रदान करता हूँ। तो देखिए ये है भक्ति। उपमा दिया जैसे गुरु अपने शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है, तो गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतो, क्या है यानी उनके प्रसाद के बिना कोई गति ही नहीं है। और भगवान गुरु का यदि प्रसाद है, कृपा है, तो भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। तो गुरु की जब कृपा हो जाती है तो शिष्य यदि योग्य नहीं होता है, इतनी तपस्या तपस्वी नहीं होता है, और गुरु की कृपा हो जाती है तो भगवान की कृपा प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ कर्दम मुनि कहते हैं कि देवी मैंने भगवान की खूब भजन साधना की है और आप उसकी भागीदार हो गई। यानी बताया ना, जो पत्नी अपने भक्त पति की सेवा करती है तो उसे आधा फल मिल जाता है, ऐसी प्रदान हो जाता है। तो इसलिए गुरु की सेवा करना बड़ा ही परम आवश्यक है। बिना गुरु की सेवा के तो हम भगवान कृपा को प्राप्त कर ही नहीं सकते। नारद जी को देखो ना, नारद जी जब व्यास जी थोड़े भ्रमित हो रहे थे, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, रचना करने के बाद भी संतुष्टि उन्हें नहीं हो रही थी, जब संतुष्टि नहीं हो रही थी बड़े खिन्न मन बैठे हुए थे। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो व्याघात आश्रमं प्रागुदाहृतम्। जब व्यास जी बड़े खिन्न मन बैठे हुए थे तो उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को आया हुआ देख करके व्यास जी प्रसन्न हो गए, कहा कि महाराज आप अच्छे समय पर आए। नारद जी बोले वो तो बात ठीक है, लेकिन आप चिंतित क्यों हो? तो सारी बात उन्होंने बताई, इस बात की चिंता है, मैंने बहुत सारे शास्त्र पुराणों की रचना की पर मेरे मन में संतुष्टि नहीं हो रही, ऐसा लगता है कि मेरा कार्य अभी अधूरा है। नारद जी बोले संतुष्टि होगी कैसे? संतुष्टि तुम्हें आपके कार्य से होगी कैसे, और तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा भी कैसे? मान लिया आपने बहुत सारे शास्त्रों की पुराणों की खूब रचना की है, यथा धर्मादय शर्था मुनिवर्य अनुवर्णिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। महाराज जी बोले जिस प्रकार आपने धर्म अर्थ काम इन पुरुषार्थों की खूब बड़ी भारी विस्तार से इसकी चर्चा की है, उस प्रकार न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता, उस प्रकार आपने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन तो किया ही नहीं। इसलिए जब तक भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं होगा तब तक तुम्हारा कार्य तुम्हारे शास्त्र सब अधूरे के अधूरे ही रहेंगे। ये तो काक तीर्थ जैसे हैं, जैसे कौआ कहाँ जाके बैठता है, कौए का तीर्थ स्थान क्या है? कूड़ादान, कचड़े में जाके बैठता है। पर ये तो जब तक भगवान की महिमा का वर्णन नहीं होगा जिस शास्त्र में, वो तो एकदम कौए के तीर्थ स्थान के जैसे हैं। इसलिए भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, तभी मनुष्यों का कल्याण होगा उनकी लीलाओं का श्रवण करके, और तभी आपका कल्याण होगा, तभी आपका कार्य पूर्ण होगा। और देखो, तुम भागवत की रचना करो। तो नारद जी ने चतुर श्लोक भागवत सुनाई और कहा इसको विस्तार से 18,000 श्लोकों में इसकी ठीक से विस्तार से इसका रचना करो। ठीक है प्रभु। तो कुछ व्यास जी को कुछ ऐसा लग रहा था कि 18,000 श्लोकों में भागवत की कैसे रचना कर सकता हूँ। तो नारद जी समझ गए, व्यास जी आप चिंतित मत हो, जानते हो संतों की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है, इसलिए आप चिंता क्यों करते हो। अरे मेरे बारे में देखो ना, मैं पहले क्या था, दासी पुत्र था। बोले अहम पुरातीत भवे भव मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकेव योगिनां शुश्रूषण प्रावृषि निर्विज्ञताम। कहते हैं कि पहले मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ उन ब्राह्मणों की सेवा करती थी जो वेदवादी ब्राह्मण थे और एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे। तो मैं 5 वर्ष का था, उसमें छोटा बालक था मैं। यद्यपि मेरी अवस्था खेलने की थी पर मेरा मन खेलने में नहीं लगता था, मेरा उन संतों के दर्शन करके मेरा मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। ये संतों की विशेषता है, संत के दर्शन और संत का श्रवण, संत की सेवा, ये सब बड़ी परम कल्याणकारी है। संत के दर्शन करने से परम लाभ मिल जाता है, और संत के जब मुख से सुनते हैं तो उसका तो कहना ही क्या है, संत की सेवा करते हैं तो उसका तो कहना ही क्या है, ये परम कल्याणकारी होता है। तो बोले कि मैं भी उन संतों की सेवा कर दिया करता था अपनी क्षमता के अनुसार, और वो संत हमेशा भागवत चर्चा करते रहते थे। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम, ये संतों का स्वभाव होता है। कथ्यन समाम नित्यम तोष्यंत च रमंति च, जो संत होते हैं जिनका चित्त हमेशा मुझ में लगा रहता है, वो आपस में चर्चा करेंगे तो कथ्यन समाम मेरे बारे में कहेंगे, और तुष्यंत च रमंत च, ऐसा करने पर उन्हें बड़ी संतुष्टि होती है और मुझ वासुदेवी रमण करते हैं। तो संत ऐसा ही करते थे, मैं भी उनसे कुछ कथा सुनता था, कथा सुनते 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 मेरा हृदय एकदम शुद्ध हो गया, अब तो मेरा मन संसार में बिल्कुल लगे ही नहीं। पर मुझे बड़ा दुख ये हुआ कि संतों के जो 4 महीना जब उनके व्रत के पूरे हो गए, संत चलने लगे, तो मैंने कहा महाराज जी मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो संत बोले नहीं बालक, देख भाई तू हमारे साथ अभी नहीं जाएगा। बोले क्यों महाराज? अरे भाई देख, तू हमारे साथ जाएगा, पहली बात तो ये कि तू अपनी माँ का अकेला है और तेरी माँ का तेरे अलावा कोई दूसरा आश्रय भी नहीं है, और एक पुत्र का कर्तव्य है कि माँ की सेवा करे। माँ के ऋण से कभी जीव ऋण नहीं हो सकता, और माँ प्रथम गुरु होती है। माँ बालक में जैसे संस्कार डालती है वैसे ही बच्चे में संस्कार पड़ते हैं। तो माँ की सेवा करो, माँ के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। जब तुम्हारी माँ सिधार जाए उसके बाद आप संत में आकर के सत्संग कर सकते हैं, संत में रह सकते हैं, साधु बन सकते हैं, और जब तक तुम्हारी माँ घर में है तब तक तुम माँ की सेवा करो। ठीक है प्रभु, पर मैं कैसे रहूँ, कुछ मुझे उपाय तो बताओ, क्या करता रहूँ। बोले जप करते रहो। तो एक मंत्र दे गई हमको, क्या मंत्र दिया, बोले ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बोले ये हमको मंत्र दे गए वो, और मैं बस मंत्र का जप करता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ, पर मन में सोचता था कब हमारी माँ सिधारें, तब हम वन में जा करके और भगवान की भक्ति करें और संतों का संग करें, यही मन में सोचते रहते कभी जल्दी सुधारें। पर एक दिन भगवान ने हमारी सुन ली, क्या सुनी, और एकदा निर्गत आगे हम दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशत पदाम स्पष्ट कृपणाम काल चोदिता। बोले एक दिन हमारी मैया गैया दुबे के लिए जा रही, रात्रि का समय था, सर्प के ऊपर पैर पड़ गया अंधेरे में, दिखा नहीं। सर्प के ऊपर जैसे ही पैर पड़ना हुआ और सर्प ने काट लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तुम्हें दुख भी लगा और सुखी भी खूब हुआ। दुख इस बात का हुआ कि संसार में जो सबसे बड़ी ममता है वो माँ की ममता है, माँ का प्रेम है, माँ का प्यार। जो माँ का प्यार होता है वो कहीं कहीं है ही नहीं, मिलता ही नहीं कहीं। तो संसार में जो सबसे बड़ा माँ का प्यार था वो हमसे आज छूट गया। और प्रसन्नता इस बात की हुई कि हमारे भजन साधन में बन जाने में केवल एकमात्र ही बाधा, एकमात्र रोड़ा हमारी माँ थी, जिसके कारण हम वन में नहीं जा पा रहे थे। अब वो सुधार गई, अब आराम से संतों का संग करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, अब कोई चिंता ही नहीं है। तो नारद जी बोले, फिर हमने देखो भगवान की खूब भक्ति करी और उन संतों की सेवा के प्रभाव से आज मैं नारद जी हूँ। मेरा नाम नारद है और जानते हो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ। स्त्री पुरुष के संभोग संयोग से भी उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ। और मेरे हाथ में वीणा देखते हो, ये वीणा बड़ी दिव्य वीणा है, कहीं दिल्ली की मार्केट से या आगरा की मार्केट से नहीं खरीदी है, ये दिव्य वीणा है। क्या विशेषता है इसमें, बोले देव दत्ता इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। कहते मेरे हाथ में वीणा है ना, देवदत्त इमाम वीणा, ये देवलोक से वीणा प्राप्त हुई है हमको। और इस वीणा में क्या विशेषता है, बोले स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये हमेशा ब्रह्म स्वर से यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हमेशा इसमें कीर्तन की झंकार निकलती रहती है। और देखो इसका कीर्तन करते करते मैं किसी भी लोक में बेरोक टोक, बिना एरोप्लेन के, बिना किसी वायुयान के, बिना किसी साधन के ही किसी भी लोक में जा सकता हूँ। ये मुझे भगवान की विशेष कृपा शक्ति प्रदान हुई है। न तो कहीं रोक टोक हमारी कहीं जा सकते हैं और ना मैं कोई सवारी चाहिए, ऐसे ही जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि साधु गुरु की सेवा करने से परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये जो वेदर भी है अपने पति की खूब सेवा कर रही थी और सेवा करते करते शरीर का भी होश नहीं था, और उसने देखा कि हमारे पति के चरणों में चरण दबाती समय ठंडे पड़ गए, समझ गई अब ये चले गए, बड़ी दुखी होने लगी। तो आगे के श्लोक में बेचारी खुद दुखी होकर रो रही है, बड़ी चिंता कर रही है। तो स्वयं भगवान ही ब्राह्मण का रूप बना के आएंगे और उसको समझाएंगे, वही भगवान का साक्षात भगवान ही आएंगे रूप बना करके। बड़ी सुंदर कथा आएगी आगे, तो यही हम वाणी को विराम देते हैं, समय ज़्यादा हो गया। हरे कृष्णा। हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ बढ़िया प्रश्न है। उनकी हवा करती रही और भी कुछ न कुछ सेवाई करती रही उनकी, सेवा ये ध्यान में बैठे कोई तो हवा भी करना है, और भी कोई जीव जंतु किसी प्रकार का कोई नहीं, हमेशा सावधानी सेवा में लगी रही है ना। और यहाँ इसका तो ये दिया है कि ये तो पति के चरण दबा रही थी बेदर भी, तो जबकि पति उसके ध्यानस्थ थे फिर भी पति के चरण दबा रही थी वो। तो सबसे बड़ी सेवा पति की चरणों की सेवा है, जो तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ कोई स्त्री है कौन है? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी का स्थान कहाँ है? हमेशा पति के चरणों को सेवा करती रहती हैं वो। तो हमें श्रेष्ठ लोगों के आचरण से शिक्षा मिलती है हमें, ठीक है? और कोई प्रश्न क्लियर ना? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। कल महाराज जी बता रहे थे ना, प्रबंध महाराज, कि गुरु जिसको त्याग देता है उसे फिर भगवान भी त्याग देते, वो भी उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो हर तरह से गुरु को प्रसन्न करने का ही प्रयास करते रहते हैं, है ना? गुरु को प्रयास करने का उद्देश्य क्या है? भगवान हमारे प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु की सेवा करना होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पति की सेवा करना होता है। पत्नी का जो धर्म होता है पति की सेवा करना, किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। जैसे भगवान ने गोपियों ने कहा ना, भगवान ने कहा कि देखो स्त्री का धर्म है परम धर्म, अपने पति की सेवा करें। तो गोपियों ने ठीक है प्रभु, मान ली आपकी बात, आपकी बात बिल्कुल मान ली, पर भी जानना चाहती हैं कि हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है उसका फल क्या होता है। उन्होंने प्रश्न किया गोपियों ने, भगवान को निरुत्तर कर दिया उन्होंने। बोले ये बताओ, जो कोई जो पत्नी अपने पति की सेवा करती है कौन से फल की प्राप्ति के लिए? कृष्ण की प्राप्ति के लिए कि नहीं? बोले हाँ, तो आपकी प्राप्ति हो गई। जब आपकी प्राप्ति हो गई तो फिर क्या अब हमारा और कोई धर्म बाकी बचा क्या? तो यह है कि भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु की सेवा करना, पति की सेवा करना, अन्य जो भी हमारे धर्म हैं धर्म का पालन करना, जो असली फल है, असली फल कृष्ण है, उसकी प्राप्ति के लिए हम सारा कुछ है ना, भजन साधन या जो भी करते हैं उन्हीं की प्राप्ति के लिए करते हैं। जब वो प्राप्ति हो जाए तो कहना ही क्या है।